पृष्ठ संख्या 196, 16। हिंदी आलोचना का वर्तमान परिदृश्य बहुत आश्वस्तकारी नहीं कहा जा सकता, परिणाम की नहीं गुणवत्ता की दृष्टि से। इसका मुख्य कारण है साहित्य के केंद्र से विचारधारात्मक चिंतन का ह्रास। 20वीं सदी के अंतिम दौर में तकनीक और सूचना तंत्र की प्रविधियों में जो परिवर्तन शुरू हुआ, उसके समानांतर लिखित शब्द के भविष्य के बारे में तरह तरह की आशंकाएं भविष्यवाणियों के रूप में व्यक्त की जाने लगीं। समय साक्षी है, ना प्रकाशन में कोई कमी आई है, न लेखन में। पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। रचनात्मक साहित्य के अनुपात में गंभीर सरोकारों से प्रेरित विचार समृद्ध आलोचना ग्रंथों की रचना भले ही बहुत उत्साहवर्धक ना हो, पर समीक्षा लेखों मुख्यतः प्रायोजित का अंबार लगा है। कुछ महीने पहले प्रकाशित एक ग्रंथ की आनन फानन में 30 से अधिक प्रशस्ति परक समीक्षाएं सामने आ गईं। अफवाह है कि एक अस्तमान रचनाकार अपनी एक गुजरे जमाने की रचना पर पूर्व प्रकाशित समीक्षाओं का संग्रह छपवाने की फिराक में है, ताकि पाठकों की स्मृति में एक बार फिर अपनी छवि ताजा कर सकें। इससे मिलते जुलते उदाहरण और बहुत से मिल जाएंगे। युवा पीढ़ी को शिकायत है कि उनका नोटिस नहीं लिया जा रहा। वरिष्ठों को अफसोस है कि गंभीर लेखन के अनुकूल माहौल नहीं रह गया। आलोचकों ने अपनी लेखनी को लगभग विराम दे दिया है। कौन फजीहत मोल ले, हर रचना काबिले तारीफ हो जरूरी नहीं। आलोचना सुनने की किसी में ताब नहीं। आत्म परीक्षण करने के बजाय आलोचक की नियत या काबिलियत शक के घेरे में आ जाएगी। आलोचक का एक गंभीर और जरूरी दायित्व यह होता है कि वह अपनी विरासत की तरफ मुड़ मुड़ कर देखे, अतीत और वर्तमान को एक दूसरे पृष्ठ संख्या 197 के आलोक में निरखे परखे। कालजयी साहित्य के गर्भ में अक्सर आने वाले समय की रचनात्मकता को समझने सराहने वाले सूत्र जन्म लेते हैं। हर बड़े आलोचक ने यह दायित्व निभाया और आलोचकीय विवेक को विकसित करने में मदद दी। समीक्षा के प्रतिमानों का सिलसिला इस क्रम को बनाए रखने से ही प्रगतिशील होता है। पर उत्तर आधुनिक माहौल में गंभीर मानविकीय सरोकारों और विरासत के प्रति जितनी निरपेक्षता व्याप्त हो गई है, साहित्य उससे अप्रभावित रहे यह संभव नहीं है। दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में अस्तित्ववादी विचार के तहत जिस क्षणवाद का अस्थायी प्रभुत्व हुआ था, उसका अंशावतार हुआ है पूरी जीवन शैली में रूप बदलकर। हर कर्म तुरंतवाद के तहत पर लाभ लोभ की मानसिकता से अंजाम दिया जा रहा है। किन्हीं मूल्यों के लिए निष्ठा, समर्पण, दूरगामी महत्व या परिणामों की चिंता जैसे अप्रासंगिक हो गई है। कर्म के फल को भविष्य के लिए टालने का धैर्य नहीं है, तो आलोचना की अनुकूलता निष्पक्षता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाएगी। रचना की अस्थायी प्रतिष्ठा से ज्यादा तत्कालिक प्रशंसा, पद, प्रचार का महत्व हो तो आलोचना भी जुगाड़ूपन का शिकार होने के लिए अभिशप्त होगी। साहित्य एकल विद्या नहीं है, उसकी मानसिकता अनायास इतिहास, समाज विज्ञान, दर्शन, संस्कृति जैसी तमाम विद्याओं के संश्लेषण से निर्मित होती हैं। रचना में यह संश्लिष्ट मानसिकता अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से आकार लेती है। जाहिर है, उसके मर्म तक पहुँचने के लिए आलोचक में भी समानांतर योग्यता होनी चाहिए, मूल पाठ का प्रतिपाठ निर्मित करने का कौशल भी। इस गंभीर दायित्व का निर्वाह फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आलोचना अपनी विश्वसनीयता खो देती है। आलोचना का स्वरूप एक हद तक इस बात पर भी निर्भर रहता है कि उससे पाठक की अपेक्षा क्या है। रचना की ही तरह आलोचना का भी लक्ष्यीभूत पाठक वर्ग होता है। दिक्कत यह है कि इन तमाम स्थितियों के बारे में अपेक्षित दायित्व बोध का क्रमशः क्षरण हुआ है। आलोचना किसी रचनाकार के हिसाब बैठाने या चुकाने का मामला नहीं हो सकती। वैसे कूड़े करकट को समय छांटता चलता है। दिक्कत इस अंबार के बीच से आलोक के उन विरल अंशों को पहचानने और रेखांकित करने की है, जिनमें साहित्य के भविष्य को बचाने और विकसित करने की संभावना पृष्ठ संख्या 198 निहित है। पहचान कठिन है, क्योंकि ऐसे प्रयास नोट्स, टिप्पणियों, डायरी में अंकित टीपों के कण रूप में ज्यादा बिखरे हैं, स्थिर मना आलापीय लेखन के रूप में कम। प्रदूषण के विश्वव्यापी खतरे की मौजूदगी में अभिव्यक्ति के हर प्रयत्न को सूचना तकनीकों के उस हमले से बचाने का संकट अलग है, जिसमें एक ही माध्यम प्रसंग भेद से वरदान और अभिशाप किसी का भी रूप ग्रहण करने के लिए लगभग स्वतंत्र हैं। गंभीर साहित्यिक रचना और आलोचना की दुनिया में ब्लॉग और फेसबुक संस्कृति के वांछित अवांछित हस्तक्षेप की भूमिका का जायजा लेने की जरूरत को भी बहुत समय तक टाला नहीं जा सकता। फिलहाल आलोचना इस विकट पर स्थिति के बीच अपना अस्तित्व बचाए और बनाए रखने की साधना में त्रस्त और व्यस्त है।